HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
मन की शांति मिल सकती है क्या? इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चलूंगी जहां मन की शांति मिलती है, जहां कुछ भी पाने के लिए देवी को प्रसन्न नहीं करना पड़ता। यहां देवी हमेशा प्रसन्न चित्त ही रहती हैं और उनके भक्तों को प्रसन्नता का वरदान मिलता है। बंगाल क्षेत्र पर देवी माँ की विशेष कृपा रही है और यही कारण है कि सबसे ज्यादा शक्तिपीठ इसी भूमि पर है। आज हम चलेंगे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पश्चिम बंगाल के वीरभूम जनपद के लाभपुर के अट्टाहस गांव में, जहां स्थित है अट्टाहस शक्तिपीठ। मान्यता अनुसार यहां देवी का निचला होंठ गिरा था। यहां की शक्ति है फुलारा देवी और भैरव भगवान विश्वेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूं। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माने धारण किए, वहां वहां शक्तिपीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्तिपीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्तिपीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहां कैसे पहुंचे। अट्टाहस शब्द का अर्थ होता है निर्भय, उन्मुक्त, जोर की हंसी या ठहाका मारकर हंसना। अब जरा गहराई से सोचिए, उन्मुक्त ऐसी हंसी कौन हंस सकता है? अट्टाहस वही लगा सकता है जो सब दुखों से मुक्त हो, जो निर्भीक हो और जिसे किसी बात की चिंता ना हो। और फुलारा जो यहाँ की शक्ति है, उसका अर्थ है सदैव फूलों की तरह खिली रहने वाली, मुस्कुराने वाली, ब्लूम करने वाली कन्या। फुलारा शब्द का शाब्दिक अर्थ है खिलना। ये नाम माता सती के होठों की प्रशंसा में है, जो खिलते हुए कमल की तरह दिखते हैं। फुलारा के मंदिर के पास ही भैरव विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसे भगवान शिव ने अपनी प्यारी पत्नी के होठों की रक्षा का कार्य सौंपा था। यही इस स्थान की महिमा है कि जो कोई भी यहाँ दर्शनों को आता है, देवी माँ उसके सब दुख, सब कष्ट, सब चिंताएं हर लेती हैं। भक्त निर्भीक हो जाता है और फुलारा देवी स्वयं प्रसन्न चित्त ही रहती हैं, क्योंकि उनके साथ शिव का विश्व का पालन करने वाला विश्वेश्वर स्वरूप सदा रहता है, इसलिए वो भी समस्त चिंताओं से मुक्त हैं। प्रसन्न चित्त रहने वाली माँ को उपायों से प्रसन्न नहीं करना पड़ता, माँ के दर्शनों से विशेष शक्ति और मन की शांति प्राप्त होती है। इस मंदिर के विषय में एक प्रचलित कथा है। मंदिर के प्रांगण में आज भी एक बहुत बड़ा तालाब है, जो इस कहानी की पुष्टि करता है। माता सीता के अपहरण के बाद भगवान राम माता सीता कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, उन्हें कैसे वापस लाया जाए, इन सब बातों के लिए बेहद चिंतित थे। वे भ्राता लक्ष्मण और हनुमान बाबा के साथ इस स्थान पर आए। यहाँ उन्होंने प्रसन्न चित्त फुल्लारा माता और जगत के पालनहार भगवान विश्वेश्वर की आराधना की। इस आराधना में हनुमान बाबा ने तालाब से 108 नीले कमल एकत्रित किए। जब श्री रामचंद्र ने उन्हें देवी दुर्गा की पूजा में समर्पित किया, तब प्रसन्न चित्त वाली देवी और विश्वेश्वर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर सफलता का वरदान दिया। इस पूजा के बाद उनके सब रास्ते आसान होते चले गए और अंत में उन्होंने विजय प्राप्त की। मंदिर के बगल में आज भी एक बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ देवी पार्वती की दो प्रतिमाएं हैं, एक है भवानी और दूसरी देवी सती की है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जनपद के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अट्टाहस गांव, और इसी अट्टाहस गांव में ईशानी नदी के तट पर स्थित है अट्टाहस शक्तिपीठ, जहां देवी के निचले होठों का निपात हुआ था। माँ की कमल के समान मुस्कुराते होठों से ही इस स्थान का नाम अट्टाहास हुआ और देवी फुलारा देवी कहलाई। अट्टाहास शक्तिपीठ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। प्रकृति से प्रेम करने वाले के लिए ये स्थान एक आदर्श है। ये मंदिर विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों और पेड़ों के साथ जंगल के बीच स्थित ईशानी नदी के किनारे स्थित है। वैसे तो मंदिर सतयुग से स्थापित है, परंतु जीर्णोद्धार के बाद भी इसे 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। इस मंदिर को बहुत बार लूटा गया। 1915 तक मंदिर में प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। उसके बाद मूल मूर्ति को बांगिया साहित्य परिषद संग्रहालय में रखा गया था। ये मूर्ति धातु से बनी हुई थी। मूर्ति की पुनः स्थापना के बाद मूर्ति को लूट लिया गया। इस स्थान पर खुदाई में मिली शिलालिपि का एक शिलालेख भी खोजा गया था, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है। उस पर शोध और अध्ययन आज भी चल रहा है। ये उम्मीद की जाती है कि यदि इस शिलालेख को सही ढंग से पढ़ा जाए तो मंदिर से संबंधित उचित विवरण मिल सकता है। माता का ये भव्य शक्तिपीठ एक बहुत ही मनोरम स्थल है। यहाँ प्रकृति में ही देवत्व है। पंछियों के स्वर, प्रकृति की खुशबू और ईशानी नदी के बहने की कल कल ध्वनि, इस स्थान पर पहुँचते ही मन शांति प्राप्त करने लगता है। ये मंदिर एक बहुत बड़े परिसर में बना हुआ है और इसमें मुख्य गर्भगृह के अलावा और भी बहुत से सुंदर मंदिर हैं। बंगाली आर्किटेक्चर से बना ये सुंदर मंदिर बंगाल की प्रसिद्ध दुर्गा बाड़ियों जैसा ही है। इसका मुख्य द्वार रंग बिरंगा सुंदर नक्काशी से बना है। मुख्य द्वार के ऊपर 3 मंडप हैं। मुख्य द्वार से अंदर जाते ही रास्ते के दोनों ओर मुख्य द्वार के जैसे ही बहुत सारे स्तंभ हैं, जिन पर लाइट्स लगी हैं। थोड़ा आगे चलते ही सामने ही ध्यान अवस्थित भगवान शिव की सुंदर विशाल प्रतिमा है, जिस पर फाउंटेन भी बना है। भगवान शिव की प्रतिमा के पीछे अद्भुत रास मंच है, जिसमें देवी सती की पूरी कथा पेंटिंग्स के द्वारा दीवारों पर बनाई गई है। ये बहुत ही सुंदर अनुभव है। शिव विवाह से लेकर शक्ति पीठ कैसे बने तक की पूरी कहानी चित्रों में देखकर मन विचलित हो जाता है और आंखें भर आती हैं। मन ये सोचने पर मजबूर हो उठता है कि माता सती और महादेव ने हम बच्चों को ये शक्ति पीठ देने के लिए कितने कष्ट स्वयं उठाए। बाईं ओर विशाल रसोई है, जहां माता का भोग बनता है, और दाहिनी ओर का रास्ता मुख्य मंदिर और अन्य मंदिरों की ओर ले जाता है। रसोई में बहुत विशाल कढ़ाई, भिगोने तथा अन्य बर्तन हैं। बड़ी बड़ी भट्टियां बनी हुई हैं। आइए अब मुख्य मंदिर में चलते हैं। मुख्य मंदिर एक बहुत ही सुंदर दुर्गा बाड़ी है, जो लाल रंग के पत्थरों से बनी है। मंदिर के ऊपर सिंह की विशाल प्रतिमा है। अंदर से मंदिर सफेद मार्बल का बना है। अंदर गर्भगृह में जहाँ देवी का स्थान है, वहाँ एक और छोटा सा मंदिर बना है, जैसे कोई डॉल हाउस हो। उसके ऊपर माँ के होठ बने हैं। इसके अंदर देवी की काले रंग की महिषासुर मर्दिनी रूप की प्रतिमा स्थापित है, जो बहुत सुंदर है। ये गर्भगृह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। गर्भगृह के बाहर आकर मंदिर प्रांगण में एक और काली माता का मंदिर है, जिसे रतांती काली माता कहते हैं। यहीं पर ही वो विशाल प्राचीन तालाब भी है, जिसके विषय में मैंने आपको पहले बताया। थोड़ा आगे चलकर भैरव विश्वेश्वर मंदिर और 5 मुंडी और एक विशाल यज्ञ स्थल है, जहां देवी पाठ निरंतर चलता रहता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है। मंदिर परिसर में ही अनेकों पेड़ है और पेड़ों पर वास करते अलग अलग प्रजाति के पंछी अपनी ध्वनि से इस पावन स्थल की दिव्यता को और भी बढ़ा देते हैं और मन को शांति देते हैं। अट्टाहास शक्तिपीठ के मुख्य त्योहार शिवरात्रि, दुर्गा पूजा और नवरात्रि हैं। अट्टाहास गांव में वार्षिक फुलोरा मेला बहुत धूमधाम और विशिष्टता के साथ मनाया जाता है, जहाँ रंगों की भरमार होती है, जहाँ गांव के बुजुर्ग मंदिर से जुड़ी चमत्कार या कहानियां भी सुनाते हैं। ये मंदिर 12 महीने दर्शनों के लिए खुला रहता है। मंदिर का खुलने का समय है सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। आइए अब जानते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचें और कहाँ रुकें। यहाँ का सबसे नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुर्गापुर है। ये अट्टाहास शक्तिपीठ से लगभग 113 किलोमीटर की दूरी पर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन लापुर है, जो अट्टाहास शक्तिपीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और स्थानीय परिवहन के माध्यम से मंदिर तक पहुंचने की सलाह दी जाती है। सड़क मार्ग द्वारा भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। कई बसें हैं जो अट्टाहास तक आती हैं। स्थानीय और निजी परिवहन भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अधिकतर लोग लापुर में ही रुकते हैं। मंदिर के आसपास भी रुकने की व्यवस्था है, परंतु बहुत अच्छे स्तर की नहीं है। पर यदि आप प्राकृतिक आनंद लेना चाहते हैं तो यहीं पर रुकें। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में, जहां स्थित है शुचि देश शक्तिपीठ, जिसे नारायणी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहां देवी माँ के ऊपरी दांतों का निपात हुआ था। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है।
This was an HD Smartcast original. HD Smartcast.